आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास टेंथ के साइंस का 10th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 163 पर हमने एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 10.3। तो यहाँ पर आपने क्या किया था इस एक्टिविटी में, बेसिकली कि आपने सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर लिया था। स्फेरिकल मिरर्स में भी हमने सबसे पहले कॉनकेव मिरर लिया था और उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है अलग अलग पोजिशंस पर ऑब्जेक्ट को रखने से, ये हमने देखा था। तो हमने क्या किया था कि हमने एक कॉनकेव मिरर लिया था और एक्टिविटी 10.2 में जो मेथड है उसकी सहायता से फोकल लेंथ पता कर लिया था कॉनकेव मिरर का। उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा कोई दूरी पर रखा हुआ हो ऐसा ऑब्जेक्ट लेना होता है, सिलेक्ट करना होता है और उसकी इमेज फॉर्मेशन करवानी होती है बाय द कॉनकेव मिरर। जिस जगह पर इमेज फॉर्मेशन होती है ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वो बेसिकली उस कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट होता है और डिस्टेंस आप मेजर कर लेंगे कॉनकेव मिरर से उस फोकस पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो फोकल लेंथ कहलाएगी। तो आप लोगों ने एक्टिविटी 10.2 में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था वो सूरज था, सन था, क्योंकि सन बहुत दूरी पर होता है तो उससे जो किरणें कॉनकेव मिरर पर पड़ेंगी तो उससे रिफ्लेक्ट होकर के वो जिस पॉइंट पर उसकी इमेज बनेगी वो आपके कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट होगा। तो आप लोग फोकस पॉइंट से कॉनकेव मिरर तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो आपको फोकल लेंथ पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना था, आपको एक टेबल पर अपनी कॉनकेव मिरर को प्लेस करना था, चौक से एक लाइन बना लेनी थी। उसके बाद जो आपने लाइन बनाई है उसी पर आपको अपना कॉनकेव मिरर प्लेस करना था और इस पॉइंट को आप पोल पॉइंट भी कह सकते हैं जो कॉनकेव मिरर के ऊपर होता है और पोल को आप लोग पॉइंट से पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल पी से। उसके बाद कैपिटल पी से आप लोगों को फोकल लेंथ की एक मेजर करनी थी डिस्टेंस और एक और लाइन ड्रॉ करनी थी, फिर फोकल लेंथ से एक और फोकल लेंथ की डिस्टेंस मेजर करके आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी थी। बेसिकली आपको तीन लाइंस ड्रॉ करनी थी, एक पोल के लिए, एक फोकल लेंथ के लिए और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर की पॉइंट जो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, वो लाइन ड्रॉ करनी थी। तो तीन लाइंस आपको ड्रॉ करनी थी। उसके बाद आपने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो कॉनकेव मिरर से, बहुत ज़्यादा दूरी पर रखा हो, तो उसकी जो इमेज बनती है वो फोकस पॉइंट पर बनती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, बहुत छोटे साइज की होती है, रियल होती है, उसे स्क्रीन पर लाया जा सकता है और इन्वर्टेड होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम बियॉन्ड सी रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे की तरफ रखें, तो उसकी जो इमेज बनती है वो बिटवीन फोकस पॉइंट एंड कर्वेचर पॉइंट बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है उसके और फोकस की जो लाइन है उसके बीचों बीच कोई इमेज बनती है जब आप ऑब्जेक्ट को जो सी है उसके आगे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखते हैं, और ऐसे में जो इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है, छोटे साइज की होती है, रियल होती है यानी स्क्रीन पर लाया जा सकता है और इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। उसके बाद अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो कॉनकेव मिरर उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनाती है, सेम साइज की बनाती है, रियल होती है, स्क्रीन पर ला सकते हैं, इन्वर्टेड होती है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड सी बनती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके आगे बनती है, एनलार्ज्ड होती है, साइज में बड़ी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। अगर आप फोकस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत ज़्यादा साइज की बड़ी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इसमें एक ही केस ऐसा है जब आप एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करवा सकते हैं बाय अ कॉनकेव मिरर, वो तब है जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उस केस में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, यानी कि इसके लिए आपको इमेज को अपने मिरर के अंदर ही देखना होगा। एनलार्ज्ड इमेज बनती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल मतलब ऐसा है कि जो स्क्रीन पर नहीं लाई जा सकती। तो यहाँ तक देखने के बाद हमने बात की थी कि किस तरीके से रे डायग्राम बना सकते हैं हम, किसी भी कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है तो उसको रे डायग्राम से कैसे हमें शो करना होता है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हमें ध्यान में रखते होते हैं। जैसे कि पहले तो आप क्या करेंगे, आप कॉम्पस लेंगे, उसमें पेंसिल लगा करके एक स्फीयर का छोटा पार्ट या फिर सर्कल का छोटा पार्ट कह सकते हैं, तो पेपर के ऊपर आप स्फीयर का छोटा पार्ट या फिर सर्कल का छोटा पार्ट ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पस, और उसके बाद आप जब कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वो सेंट्रल पॉइंट हमेशा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि कैरी करता होगा, उस लाइन पर पॉइंट होंगे कौन कौन से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप जो आपने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन पर आपका पोल का पॉइंट होना चाहिए, फोकस पॉइंट होना चाहिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट होता है वो भी होना चाहिए। पोल का पॉइंट तो लाई करेगा आपके मिरर के ऊपर भी, तो आप बेसिकली पोल के पॉइंट से बाकी सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं पेज नंबर 164 पर फिगर 10.3 में किस तरीके से जो लाइन है वो ड्रॉ की गई है। कौन सी लाइन की बात की जा रही है यहाँ पर, वो लाइन जो कैरी करती है पॉइंट्स, पॉइंट पी, पॉइंट एफ एंड पॉइंट सी, इसको कैरी करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है। तो इसी तरीके से आपको भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये दिखाना है कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रे डायग्राम से आपको यहाँ पर शो करना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स आपको दिमाग में रखने हैं, जैसे कि अगर कोई लाइन पैरेलल पड़ती है आपके मिरर पर, कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास करती है। जो कॉनकेव मिरर है उसके केस में फोकस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, तो जो पैरेलल लाइन इंसिडेंट है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर फोकस पे कट करेगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो सेम केस होगा, यहाँ पर भी इंसिडेंट लाइट जो है वो पैरेलल टू दी लाइन है जो पी एफ और सी को कैरी करती है। तो पैरेलल लाइन अगर इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स मिरर पर तो उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपीयर होती है कि वो फोकस पॉइंट को कट कर रही है। तो हमेशा जब भी पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर पर तो वो फोकस पॉइंट को कट करती है जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरा ये कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसी है जो कि फोकस पॉइंट को कट करती हुई इंसिडेंट है मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्ट होते वक्त पैरेलली रिफ्लेक्ट होती है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 10.4 ऑन पेज नंबर 165। उसके बाद एक और रूल है कि अगर कोई रे ऐसी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती हुई मिरर पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होते वक्त वो सेम पाथ से रिट्रेस होती है, उसी रास्ते पर वो चलती है जिस रास्ते से वो आई थी। ये आप लोगों को फिगर 10.5 में दिखाया गया है ऑन पेज नंबर 165। उसके बाद एक और रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है वो भी यहाँ पर फॉलो होता है कि अगर मिरर पर किसी एंगल से कोई इंसिडेंट लाइट पड़ी है और वो एंगल कहाँ से बना रही है, वो एंगल बना रही है उस लाइन से जो कैरी करती है पॉइंट्स पी एफ एंड सी, तो इस लाइन से एंगल पर कोई इंसिडेंट लाइट पड़ती है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर होगा वहां से। उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आप लोग देख भी सकते हो फिगर 10.6 में आपको दिखाया गया ऑन पेज नंबर 165। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर ये टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ तो अभी वही रहते कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको रे डायग्राम से शो करना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है बाय अ कॉनकेव मिरर। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, आप पेज नंबर 166 पर आ सकते हैं और फिगर 10.7 में आप लोगों को अलग अलग रे डायग्राम्स दिखाई गई हैं जिसमें आपको बेसिकली बताया गया कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजिशन पर रखने से इमेज की फॉर्मेशन अलग अलग पोजिशन पर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इसमें ए पार्ट है, फिगर 10.7 का जो ए पार्ट है, इसमें आप देखिए इसमें आपको बेसिकली क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और उसकी इमेज जो है वो फोकस पर बनी है क्योंकि इंसिडेंट लाइट जो है आप लोग देख सकते हैं उसकी एरो कैसे है, इंसिडेंट लाइट ऐसी है जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन कैरिंग पॉइंट पी, पॉइंट एफ एंड पॉइंट सी, तो इस लाइन को कैरी करती हुई जो एक लाइन है उसकी पैरेलल लाइंस बनाई गई हैं जो ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है। अब ये पैरेलल लाइंस की जो आप डायरेक्शन है उसे कैसे पता लगाएंगे कि यही इंसिडेंट लाइट है, आप एरो देखेंगे, एरो की डायरेक्शन देखेंगे। यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस है उसमें एरो बनाई गई है जो कि फेस कर रही है मिरर को, यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि यही इंसिडेंट लाइट है। रिफ्लेक्टेड लाइट जब होगी तो उससे एरो बनेगी अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इंसिडेंट लाइट है पैरेलल लाइंस उसमें एरो जो बनाई है वो टूवर्ड्स द मिरर बनाई है, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द मिरर एरो को कैरी कर रही है और वो कहाँ कट कर रही है, आप देख सकते हैं वो फोकस पॉइंट पर कट कर रही है। तो यही बात जो आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है कि अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पॉइंट पर बनती है। यही आप लोगों को रे डायग्राम से शो किया गया है। दूसरा आप देख सकते हैं जो पार्ट बी है, तो पार्ट बी के अंदर आपको ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखा हो, सी के आगे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा हो, तो उसकी इमेज जो होती है वो कहाँ पर बनती है, वो बनती है बिटवीन सी एंड एफ, और इन्वर्टेड होती है, रियल होती है। रियल अगर कॉनकेव मिरर के केस में देखना है तो अगर सेम साइड पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की फॉर्मेशन हो रही है, ऑब्जेक्ट तो एक साइड पर रखा ही है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे अगर इमेज की फॉर्मेशन हो रही है तो दैट मीन्स रियल इमेज बन रही है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी में कि आप लोगों को किस तरीके से दिखाया गया है। उसके बाद आप पार्ट सी में देखो, पार्ट सी में आपको बताया गया कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। पार्ट डी में आपको ये बताया गया कि अगर ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीचों बीच रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, बीचों बीच भी रख सकते हैं या फिर आगे पीछे, मतलब बिटवीन सी एंड एफ आपको रखना है, तो उसकी इमेज जो होगी वो बियॉन्ड सी बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। लेकिन इस केस में वो साइज उसका बड़ा है, अगर आप ऑब्जेक्ट से उसका साइज देखें तो इमेज की साइज बड़ी है। उसके पहले जो हम लोग देख रहे थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होता तो सेम साइज की बनती है, लेकिन इन्फिनिटी पर या फिर बिटवीन बियॉन्ड सी अगर रखा हो तो उसकी जो इमेज बनती है वो छोटे साइज की बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। लेकिन अब जो केसेस हम देख रहे हैं, जैसे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो उसकी इमेज सेम साइज की बनेगी, अगर बिटवीन सी एंड एफ रखा हो तो बियॉन्ड सी बनेगी और वो इनलार्ज होगी, बड़ी साइज की होगी। उसके बाद अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखते हैं तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, बहुत ज़्यादा दूरी पर बनती है। इन्फिनिटी से यह मतलब नहीं है कि सन के जितनी दूरी पर बनेगी, वो इन्फिनिटी से मतलब ये है कि वो फोकस पॉइंट और सन रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले वो डिस्टेंस काफ़ी बड़ी होगी, इसलिए उसे इन्फिनिटी कहा जाता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के जैसा, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, आपके कॉनकेव मिरर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। और दूरी आप कैसे देखते हैं, आप दूरी देखते हैं कि ये दूरी उसकी जो मेजर है वो बड़ी होनी चाहिए, काफ़ी बड़ी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखते हैं कॉनकेव मिरर के, तो उसकी इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, काफ़ी ज़्यादा दूरी पर बनती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल पॉइंट, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो ऐसे केस में जब इमेज की फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के द्वारा बिहाइंड द मिरर हो रही हो तो इसे वर्चुअल कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक साइड पर है, इमेज दूसरी साइड पर है, तो ये वर्चुअल इमेज का केस है। और इमेज यहाँ पर एनलार्ज्ड है, बड़े साइज की है, और साथ ही में ये इरेक्ट भी है, सीधी है। अभी तक हमने जो केसेस पढ़े थे उसमें सारी इमेजेस जो थी वो इन्वर्टेड बन रही थी। तो इस तरीके से आप लोगों को रे डायग्राम सीखना है कैसे बनाते हैं। इससे जो आप लोगों को फिगर 10.7 में अलग अलग डायग्राम्स दिए हैं, इससे आप रेफर कर सकते हैं। इसी से आपको एक्टिविटी 10.4 करने के लिए कहा है कि जो आप लोगों ने एक्टिविटी 10.3 की थी उसमें जो आपको रिजल्ट्स मिले थे उसको आपको रे डायग्राम से मैच करना है, बनाना है। और मैच कैसे करेंगे, फिगर 10.7 में जो रे डायग्राम्स बताए गए हैं इसी से आपको मैच करना है बेसिकली। तो आपको यहाँ पर सीखना है कि रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। तो आप ऐसे छोड़ मत दीजिए कि आपको रे डायग्राम्स तो ऑलरेडी दिए गए हैं पेज नंबर 166 पर, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करनी, तो एग्जाम्स में आपको ये बोला जा सकता है बनाने के लिए रे डायग्राम, आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको रे डायग्राम बनाना होगा, तो आपको आना चाहिए। तो इसीलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 166 पर जो ये फिगर 10.7 है, अलग अलग रे डायग्राम्स जो दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से बनाना आना चाहिए। आप इसे लर्न कर लेंगे और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ पर इमेज बनती है, किस तरीके की बनती है, तो ये सारा भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर बताया गया कि क्या क्या इसके यूजेस हैं, अलग अलग इस्तेमाल हम किस किस रूप में कॉनकेव मिरर को करते हैं, ये आपको बताया गया है। तो कॉनकेव मिरर को टॉर्चेस में इस्तेमाल किया जाता है, सर्च लाइट्स में, यानी कि ये भी टॉर्च के जैसे ही होती है, इससे लाइट ज्यादा पड़ती है, फोकस्ड होती है वो। जैसे आप लोगों ने कभी मूवीज में देखा होगा कि जो वर्कर्स होते हैं जो वो टनल में जाते हैं काम वगैरह करने के लिए, तो वो उनके हेड पे एक लाइट होती है जो काफी फोकस्ड होती है, बीम के जैसे दिखती है। तो इस तरीके की जो लाइट बनानी होती है उसके लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। साथ ही में टॉर्चेस में यूज किया जाता है, जो व्हीकल्स होती है उनकी हेडलाइट्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी पावरफुल और फोकस्ड बीम की जैसी लाइट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो इसीलिए अलग अलग लाइट्स में इसको यूज करते हैं, टॉर्चेस में या फिर व्हीकल्स की हेडलाइट्स में या फिर सर्च लाइट्स में। उसके बाद ये जो कॉनकेव मिरर है इसका यूज करते हैं जब शेविंग करते होते हैं, तो फेस को एनलार्ज दिखाने के लिए, बड़े साइज का दिखाने के लिए जो कॉनकेव मिरर है इसका यूज किया जाता है, तो शेविंग मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं। साथ ही में डेंटिस्ट जो है दांत की जो इमेज है उसको एनलार्ज दिखाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका यूज है जो कि सोलर पैनल में सनलाइट को कंसेंट्रेटेड फॉर्म में सोलर पैनल पर पड़वाने के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है कि जो कॉनकेव मिरर है ये लाइट को कन्वर्ज करने की यानी कि इसको इकट्ठा करने की, कंसेंट्रेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो लाइट जब कॉनकेव मिरर पर पड़ती है तो उससे टकरा करके एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, और ये पॉइंट जो होता है वो बेसिकली फेस कर रहा होता है सोलर पैनल्स को, और सनलाइट जो है वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में सोलर पैनल पर पड़ती है बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर्स। तो इस तरीके से वेरियस यूजेस हैं, ये यूजेस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप मार्क कर लें इम्पॉर्टेंट और आप इसे लर्न कर लेंगे, आपको एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली ये पूछे जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। हमने अभी तक कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। सेम आपको यहाँ पर भी एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है, एक्टिविटी 10.5। तो इस एक्टिविटी में आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक कॉन्वेक्स मिरर को लेना है, उसको आपको एक हाथ में पकड़ना है, यानी कि आप एक स्टैंड ले सकते हैं उसमें फिक्स करके कॉन्वेक्स मिरर को पकड़ सकते हैं। उसके बाद एक जगह पर होल्ड करके आपको उसको रखना है। अब उसके इन फ्रंट में आप कोई ऑब्जेक्ट लाइए जैसे कि पेंसिल, तो पेंसिल को जब आप अपने मिरर के सामने लाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के सामने लाएंगे, तो उसकी एक इमेज बनेगी जो कि आपको मिरर में दिखाई देगी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज का फॉर्मेशन करती है वो ऐसी होती है जो स्क्रीन पर नहीं ला सकते, यानी कि वर्चुअल होती है। तो आपको इमेज देखने के लिए मिरर के अंदर देखना होगा। अब आप अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन जैसे जैसे अलग अलग करेंगे तो वैसे वैसे इमेज जो बनेगी वो भी मूव करेगी। तो अगर आप पास में लाएंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज जो बनेगी वो भी पास में आपको आती हुई अपियर होगी, अगर आप दूर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट तो थोड़ी दूर जाती हुई अपियर होगी। जैसे जैसे आप ज्यादा दूर ले जाएंगे तो इमेज की साइज छोटी होती जाएगी, आप थोड़ा आगे की तरफ आते आएंगे यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के पास में लाएंगे ऑब्जेक्ट को तो थोड़ी सी साइज बड़ी होगी, लेकिन तभी भी एज कम्पेयर टू दी ऑब्जेक्ट वो साइज छोटी ही होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन दिखेगी बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर आप लोगों को रे डायग्राम से भी दिखाया गया है, पेज नंबर 167 पर फिगर 10.8। इसमें आप लोगों को दो डायग्राम्स दिखाए गए हैं, दो अलग अलग पोजीशंस पर किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ये आप लोगों को शो किया गया है इन फिगर 10.8 पेज नंबर 167। तो इसमें आप लोगों को दिखाया गया है फर्स्ट केस में पार्ट ए में कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, बहुत ज्यादा दूरी पर रखा हो फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, तो उसकी इमेज जब बनती है तो वो फोकस पॉइंट पर बनती है, यानी कि मिरर में आप देखेंगे तो जिस भी पॉइंट पर आपको इमेज बनती हुई अपियर हो रही है, इमेज की फॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट की बन रही है, तो वो पॉइंट जो है बेसिकली वो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉन्केव मिरर में फोकस पॉइंट था इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस पॉइंट है वो बिहाइंड द मिरर है, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की उसे आप स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे क्योंकि इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। अब ये जो इमेज है आप देख सकते हैं ये हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटे साइज की, पॉइंट साइज की है, बिल्कुल फोकस पॉइंट पर ही बन रही है, तो इतनी छोटे साइज की इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड है, वर्चुअल होती है क्योंकि ये आप स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते, इरेक्ट होती है, सीधे साइज की होती है। उसके बाद अब अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को आप अलग करेंगे, कहीं और रखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है उसे ऐसा रखते हैं कि वो कहीं पर भी हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, तो उस केस में उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, वो बनती है बिटवीन पोल एंड द फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर, और ये भी बिहाइंड द मिरर बनती है, यानी कि इमेज देखने के लिए आपको मिरर के थ्रू देखना होगा, मिरर में देखना होगा, जैसे आप प्लेन मिरर में देखते हैं तो वैसे ही आपको कॉन्वेक्स मिरर में देखना होगा, जब उसकी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, जैसे कि हमारी नॉर्मल प्लेन मिरर में बनती है, घर के शीशों में जो बनती है इमेज वो कैसे बनती है, वो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज की फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, डिमिनिश्ड होती है, यानी कि एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट इमेज की साइज छोटी होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको रे डायग्राम्स दे दी गई हैं, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। टैबुलर फॉर्म में आप लोगों को बता दिया गया है कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसे आपको लर्न कर लेना है पेज नंबर 167 पर टेबल 10.2। और ऐसे ही आप लोगों को एक टेबल कॉनकेव मिरर के लिए भी दी गई थी, तो उसे भी आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि इसमें से कोई सा भी केस आपको पूछ सकते हैं। आपको बस ये बताएंगे कि बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रखा हो तो उसकी इमेज किधर बनती है, किस तरीके की बनती है, कॉनकेव मिरर के केस में कैसी होती है, कॉन्वेक्स में कैसी होती है, तो ये आप लोगों को पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको सारा पहले से ही आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एक्टिविटी 10.6। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, काफी दूरी पर रखा हो आपकी मिरर से, तो ऐसे केस में हम देखना चाहते हैं कि क्या प्लेन मिरर से सेम साइज की इमेज फॉर्मेशन हो सकती है ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अ ट्री। ट्री तो आपको पता है बहुत बड़े साइज की होती है, तो अगर आप ट्री का पूरा इमेज प्लेन मिरर में देखना चाहते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा दूरी पर रखी है तो उसकी इमेज जो होगी वो बिहाइंड द मिरर उतनी ही ज्यादा दूरी पर आपको फॉर्म होती हुई अपीयर होगी। अब यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि क्या प्लेन मिरर पूरी की पूरी इमेज आपको दिखा देगी, अगर कोई बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है तो क्या उसकी फुल इमेज आपको दिख जाएगी इन द प्लेन मिरर। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़े साइज का है तो अगर वो बहुत ज्यादा दूरी पर भी रखा है तो हो सकता है कि फिर भी उसकी साइज जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द मिरर। तो अगर हम पूरी इमेज देखना चाहते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर, तो हमें उतने ही बड़े साइज का इमेज प्लेन मिरर भी लेना पड़ेगा। तो मान लो कि आप अगर अपनी पूरी इमेज देखना चाहते हैं अपनी खुद की किसी प्लेन मिरर में, तो उसके लिए आपको अपनी जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो प्लेन मिरर होती है, तो प्लेन मिरर की साइज आपको एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट यानी कि अपने साइज की आपको लेनी पड़ेगी। या फिर अगर आप अपने खुद के साइज की प्लेन मिरर नहीं रखते हैं तो आपको कम से कम अपने हाइट के आधे साइज की प्लेन मिरर लेनी पड़ेगी, तभी आप अपनी कंप्लीट इमेज उसमें देख पाएंगे प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर में बड़े साइज के ऑब्जेक्ट की सेम साइज की इमेज देखना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ऐसा करें कि आप कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, तो उस केस में आप इमेज बना सकते हैं ऑफ अ बिग साइज ऑब्जेक्ट, और उसकी जो इमेज होती है वो आपको कॉनकेव मिरर के केस में रियल इमेज मिलेगी, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको वो वर्चुअल इमेज मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा हुआ है कि कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो यानी कि बहुत ज्यादा दूरी पर मिरर से रखा हो ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है, छोटे साइज की होती है। तो इसीलिए आप इमेज फॉर्मेशन आराम से देख पाएंगे ऑफ अ बिग साइज ऑब्जेक्ट अगर आप कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। बस अंतर ये होगा कि कॉनकेव मिरर के केस में वो इमेज रियल होगी, कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो इमेज जो होगी वो ऐसी होगी कि वर्चुअल होगी और बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड होगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी हुआ है कि कॉनकेव मिरर से हम सन की इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं, सिमिलरली हम कॉन्वेक्स मिरर से भी सन की इमेज फॉर्मेशन करवा सकते हैं। अंतर ये होता है कि कॉनकेव मिरर के केस में सन की इमेज जो बनती है वो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। उसके बाद यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कर सकते हैं टू सी द इमेज ऑफ अ बिग साइज ऑब्जेक्ट। तो किसी बड़े साइज के ऑब्जेक्ट की इमेज, फुल लेंथ इमेज आप आसानी से कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। इसी बात को यूज करते हुए जो आगरा फोर्ट है, आगरा में कोई किला है जो फेस करता है ताजमहल को, और यहाँ पर एक मिरर लगाई गई है, कॉन्वेक्स मिरर लगाई गई है, जिसके थ्रू आप अगर देखें तो आप बहुत आसानी से पूरी की पूरी ताजमहल की इमेज इस कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर फेस कर रहा है ताजमहल को और आगरा के किसी किले में लगाई गई है। तो अगर आप कभी जाएं तो आप पता करके देख भी सकते हैं कि किस तरीके से इतने बड़े साइज की ताजमहल की इमेज भी आगरा के किले में होती है, और आप पूरी लेंथ देख सकते हैं, पूरी इमेज देख सकते हैं, ऑफ ताज महल इन दैट कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हम यहाँ पर यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम करते हैं टू व्यू रियर व्यू थिंग्स, यानी कि पीछे की जो चीजें हैं उसको देखने के लिए। इसको कैसे यूज करते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा जो व्हीकल्स होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, ट्रक हो गई, कार हो गई या फिर बाइक हो गई, कोई सी भी हो गई, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मिरर्स लगाई जाती हैं। अब ये मिरर्स क्यों लगाई जाती हैं, ये मिरर्स इसलिए लगाई जाती हैं कि गाड़ी के पीछे से कोई आ रहा हो तो ड्राइवर जो होता है वो तो आगे को फेस कर रहा होता है, तो वो गाड़ी के पीछे कोई और गाड़ी आ रही हो या फिर कुछ भी हो रहा हो तो वो कैसे देखेगा, तो वो देखने के लिए ही ये मिरर्स लगाई जाती हैं, क्योंकि ये फेस कर रही होती है ऑपोजिट साइड में। ड्राइवर आगे की तरफ फेस कर रहा होता है, उसका चेहरा आगे को होता है क्योंकि वो आगे ड्राइव कर रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो पीछे को फेस कर रहा होता है, ताकि पीछे क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है, क्या क्या लोग काम कर रहे हैं या फिर कौन कौन सी व्हीकल्स किस तरीके से आ रही है या जा रही है, ये सारा देखने के लिए, ड्राइवर्स के देखने के लिए ये रियर व्यू इमेज, रियर व्यू मिरर्स जो है इनको लगाया जाता है इन वेरियस व्हीकल्स। और ये व्हीकल्स की दोनों साइड लगाई जाती है, लेफ्ट और राइट साइड में लगाई जाती है, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखिए अगली बार कार में या फिर स्कूटर में या फिर ट्रक में, इनकी साइड्स में दो लगाई जाती हैं रियर व्यू मिरर्स, जो कि क्यों लगाई जाती है, ताकि गाड़ी के पीछे से कोई एक्सीडेंट ना हो तो उसको भी देखते रहने के लिए, ड्राइवर्स की देखते रहने के लिए मिरर्स लगाई जाती हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज फॉर्मेशन होती है तो वो हाईली डिमिनिश्ड होती है, छोटे साइज की होती है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स हैं पीछे उन सबकी इमेज बन जाती है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बल्ज्ड आउटवर्ड्स है, आगे की तरफ को उभरा हुआ है, तो इसी वजह से इसकी जो एरिया होती है जहाँ से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा एरिया में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबकी इमेज फॉर्मेशन ये करा के दे सकता है। तो यही आप लोग को यहाँ पर बताया है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का यही मतलब होता है कि ज्यादा एरिया में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबकी इमेज बना करके कॉन्वेक्स मिरर आपको दे सकता है, तो इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है, किसी और मिरर को यूज नहीं किया जाता है एज रियर व्यू मिरर्स। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑन पेज नंबर 168। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो आपको पूछा गया कि आपको फोकस का डिफिनेशन देना है ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो आप ये कहेंगे कि कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट वो पॉइंट है या फिर प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर जब इंसिडेंट लाइट जो है वो कहाँ से आ रही हो, इन्फिनिटी से आ रही हो, या फिर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रेज पड़ती हैं कॉनकेव मिरर पर रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज होती हैं, वो पॉइंट कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट होता है या फिर प्रिंसिपल फोकस होता है, इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो आप ऐसा लिखिए कि द इंसिडेंट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉनकेव मिरर दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर and that point is known as principal focus of a concave mirror. उसके बाद second question में पूछा गया है कि the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? तो हमें पता है कि अगर हमें radius of curvature की length दी गई है तो focus जो length होगी वो हमेशा radius of curvature की half length की होती है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो focus length होगी, focal length जो होगी वो कितनी होगी, 10 centimeter होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर पता है, आपने पढ़ा हुआ है कॉनकेव मिरर के केस में आपने देखा है कि एनलार्ज इमेज बन सकती है और वो वर्चुअल भी हो सकती है, इरेक्ट भी होती है, तो इसीलिए वर्चुअल भी होती है। और ये कब होता है, अगर आप ऑब्जेक्ट को रखें बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ दैट कॉनकेव मिरर, तो ऐसे केस में अगर पोल और फोकस पॉइंट के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज्ड होती है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज बड़ी होती है इसलिए वो एनलार्ज्ड कहला रही है, और वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है, इन्वर्टेड नहीं होती है, उल्टी नहीं होती है, सीधी होती है। तो कॉनकेव मिरर के केस में आप ये बना सकते हैं, और वो आपको ऑब्जेक्ट जो रखना होगा वो रखना होगा बिटवीन पोल एंड द फोकस पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करना क्यों प्रेफर करते हैं, इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है उसकी इमेज जो बनती है ऑब्जेक्ट्स की वो कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, छोटे साइज की बनती है, और वो हमें रियल इमेज नहीं बना करके देता, वर्चुअल इमेज देता है, तो उसे आसानी से मिरर में देखा जा सकता है, कोई दूसरी स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए, हम सिर्फ मिरर में देखेंगे और हमें इमेज आसानी से अपीयर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो बल्ज्ड आउटवर्ड्स होता है, बाहर की तरफ से वो उभरा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसकी फील्ड ऑफ व्यू जो होती है वो काफी वाइड होती है, यानी कि ज्यादा जगहों पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा एरिया कवर करता है, उन सभी की इमेज बना करके कॉन्वेक्स मिरर देता है। तो इसीलिए ये फायदे का मिरर है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर्स। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चंस जो है इनके आंसर्स लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ये टॉपिक जो पेज नंबर 168 पर है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। जिस तरीके से जो साइन कन्वेंशन है वो फॉलो की जाती है वो सारा दिखेंगे, कि जब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना होता है तो कैसे मेजर करते हैं, कहाँ से पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, हाइट जब बन रही है इमेज की तो कब उसको पॉजिटिव कहते हैं, कब नेगेटिव कहते हैं, ये सारा हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास जो है वो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आपने जो आज पढ़ा है उसे रिवाइज करना है आपको, कहीं पर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आपको अपने टीचर से ज़रूर पूछना है, डाउट्स हमेशा क्लियर करते रहिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कॉन्सेप्ट समझने में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।